ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अति मीठा अति प्यारा बेहद का बाप, आते ही हम बच्चों को सभी बातों से नॉलेजफुल कर देते हैं। बाबा ने अपना परिचय भी दिया, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हुआ हूं, आत्मा का परिचय भी दिया, कि हम कितने महान हैं, कितने श्रेष्ठ हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी रहस्य समझा दिया और त्रिकालदर्शी बना दिया। और आत्मा जो इतनी श्रेष्ठ है, महान है, सदा काल है, अविनाशी है, अनंत है, वो राज भी खोल दिया। हम तीनों कालों को देख सकते हैं, कोई साधारण सिद्धि तो नहीं है ना। हमें मालूम चल गया हम क्या थे, क्या हैं, क्या बन रहे हैं। हमें ये भी मालूम चल गया कि हम आने वाले दिनों में क्या बनने वाले हैं। तो बाबा कहते अभी इस पुरानी दुनिया में तुम्हारा कहां भी बुद्धि योग टिक नहीं सकता है। आत्मा की शक्ति इतनी अनंत है, जो हम यहां बैठे सतयुगी नजारे देख सकते हैं, हम यहां बैठे परमात्म सुख को अनुभव कर सकते हैं। इस पुराने शरीर में रहते हुए परम पवित्र घर का अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा कहते जब तुम बच्चों को इतनी सिद्धि प्राप्त है, तो अब इस दुनिया में तुम्हें कहां भटकने की, मन बहलाने की आवश्यकता ही नहीं है। उन बातों में हमारा मन बहलेगा ही नहीं, क्योंकि अभी हमें सारी पुरानी दुनिया से ही वैराग्य आ गया है। अपने पुराने देह से भी वैराग्य है, तो बाकी तो रखा हुआ क्या है, जहां हम धक्के खाते रहेंगे खुशी पाने के लिए या आनंद ढूंढने के लिए। हमें कहां भी भटकने की दरकार नहीं है। आज 13 अप्रैल है, साकार बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे बाबा 21 जन्म के लिए तुम्हारी दिल, ऐसी बहला देते हैं यहां अंतिम जन्म में 21 जन्मों के लिए तुम्हारी दिल ऐसी बहला देते हैं जो तुम्हें दिल बहलाने के लिए मेले मलाखड़े आदि में जाने की दरकार नहीं, जो तुम्हें दिल बहलाने के लिए मेले मलाखड़े आदि में जाने की दरकार नहीं। ब्राह्मणों तो सबसे ज्यादा आकर्षित किस बात के प्रति होते हैं? अगर कहां भट्टी का प्रोग्राम है तो ब्राह्मणों को आकर्षण होगा कि जाएं और तपस्या करें। बस तो हमारा सबसे ज्यादा दिल बहलाने का साधन कौन सा है? कौन सा है? तपस्या। प्रश्न, जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उनके लिए कौन सी गारंटी है? जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उसके लिए कौन सी गारंटी है? कौन सी गारंटी है? क्या गारंटी देते बाबा? इस अंतिम जन्म में बाबा क्या गारंटी देते हैं? 21 जन्मों के लिए अविनाशी सुख शांति समृद्धि का राज्य भाग्य दे देते हैं। श्रीमत पर राजधानी स्थापन करने में मददगार बनने वाले बच्चों के लिए गारंटी है। क्या गारंटी है? उन्हें कभी काल खा नहीं सकता, उन्हें कभी काल खा नहीं सकता। सतयोगी राजधानी में कभी अकाले मृत्यु हो नहीं सकती, सतयोगी राजधानी में कभी अकाले मृत्यु हो नहीं सकती। मददगार बच्चों को बाप द्वारा, मददगार बच्चों को बाप द्वारा ऐसी प्राइस मिल जाती है जो 21 पीढ़ी तक अमर बन जाती है। बाप के द्वारा कौन सी प्राइस मिलती है? कौन सी प्राइस मिलती है? 21 पीढ़ी तक अमर बन जाते हैं। ओम शांति। बने बनाए सृष्टि चक्र अनुसार कल्प पहले मुआफिक शिव भगवानो वाच और कल्प पहले माफिक हम आत्माएं शिव भगवानो वाच सुन रहे हैं, बाबा सुना रहे हैं, हमने भी कल पहले सुना था, अभी सुन रहे हैं। अब अपना परिचय तो बच्चों को मिल गया, बाप का भी परिचय मिल गया, अपना भी मिला, बाप का भी मिल गया। बेहद के बाप को तो जान लिया और फिर बेहद के सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को भी जान लिया। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई तो अच्छी रीति जान भी जाते हैं, फिर जान करके नेक्स्ट स्टेप क्या है? अगर जान लिया, समझ लिया तो क्या करेंगे? दूसरों को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। कोई अधूरा कोई कम, जैसे राजाई में भी कोई कमांडर इन चीफ है तो कोई कैप्टन है तो कोई फिर क्या बनते हैं। राजाई की माला में भी कोई शाहूकार प्रजा, तो कोई गरीब प्रजा नंबरवार है। अब बच्चे जानते हैं बरोबर हम खुद श्रीमत पर सृष्टि पर श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। कैसे स्थापन कर रहे हैं? श्रीमत पर। जितनी जितनी जो मेहनत करती हैं उतनी उतनी बाप से प्राइस मिलती है। आजकल शांति के लिए राय देने वालों को भी प्राइस देते हैं, पीस प्राइस देते हैं, तुम बच्चों को भी प्राइस मिलती है। वो उनको नहीं मिल सकती, जो प्राइस तुम बच्चों को मिल सकती वो उनों को नहीं मिल सकती। उनों को हर चीज अल्प काल के लिए मिलती है। तुम बाप की श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, सो भी 21 जन्म 21 पीढ़ी के लिए गारंटी है। वहां बचपन व जवानी में काल खाता नहीं है, कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होता। अभी तो बचपन में भी शरीर छोड़ देंगे, जवानी में भी छोड़ देते, वहां तो अपने आप संकल्प से शरीर को छोड़ देते हैं। ये भी जानते हो न मन न चित्त था, हम ऐसे यादगार पर आकर के बैठे हैं जहां तुम्हारा यादगार भी खड़ा है, जहां 5000 वर्ष पहले भी सर्विस की थी वहां ही हम आकर बैठे हैं। दिलवाड़ा मंदिर, अचलगढ़, गुरु शिखर, सतगुरु भी ऊंचे थे, ऊंच तुमको मिला है जिसका यादगार बनाया हुआ है। अचलगढ़ का भी राज तुम समझ गए हो, हा? अचल माना जो सदा अचल है, चलायमान नहीं होते। बहुई घर की महिमा, तुम ऊंचे ते ऊंच पद पाते हो अपने पुरुषार्थ से। ये है वंडरफुल तुम्हारा यादगार। और वहां ही फिर तुम चैतन्य में आकर के बैठे हो। ये सब है रूहानी कारोबार जो कल पहले चली थी, 5000 साल पहले जो चला है वो ही चल रहा है। उनका पूरा यादगार यहाँ है। नंबर वन यादगार ये है, जैसे कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनके अंदर में खुशी और रौनक आ जाती है। कोई बड़ी एग्जाम पास करते हैं तो वो सफल होने की खुशी और रौनक चेहरे पर होती है। फर्नीचर, पहरवेश आदि कितना अच्छा रखते हैं। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, बाबा हमें कितनी ऊंची नजर से देखते हैं। जब बनेंगे तब बनेंगे, लेकिन बाबा बनाने वालों को तो मालूम है ना कि यही मेरे बच्चे जाकर विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तुम्हारे से कोई भेंट नहीं कर सकता है। ये भी स्कूल है, पढ़ाने वाले को भी तुम जान गए हो। भगवान उवाच, भक्ति मार्ग में जिनकी पूजा करते हो कुछ भी पता नहीं पड़ता। भक्ति में जब पूजा करते थे तब थोड़ी मालूम था कि हम भी ऐसे देवता बन सकते हैं, या ये हमारी ही यादगार है। बाप ही सम्मुख आकर सब राज समझाते हैं, क्योंकि ये यादगार सब तुम्हारे पिछाड़ी की अवस्था की है। जितने भी यादगार बने हैं वो देवताओं के यादगार बने हैं, और देवता ही स्टेज हमारी पढ़ाई पढ़ते पढ़ते अंत में हमारी वो दैवी स्टेज बनती है जिनकी यादगार बन जाती है। जब तुम्हारी अवस्था संपूर्ण बन जाती है उनका फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनता है। जैसे रक्षाबंधन का यादगार होता है, जब पूरी पक्की राखी बांध, पवित्रता की पूरी राखी बांध अपना राज्य भाग्य ले लेते हो, तब फिर यादगार नहीं मनाते हो। सतयुग में रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे भी? कुछ याद भी होगा? नहीं। इस समय तुमको सभी मंत्रों का अर्थ समझाया है, ओम का अर्थ भी समझाया है। ओम का अर्थ कोई लंबा चौड़ा नहीं है, ओम का अर्थ है, हाँ, क्या है ओम का अर्थ? अहम आत्मा और ये मम शरीर। अज्ञान काल में भी तुम देह अभिमान में रहते हो तो अपने को शरीर समझते हो, दिन प्रतिदिन भक्ति मार्ग नीचे ही गिरता जाता है, तमो प्रधान बनता जाता है, हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, भक्ति भी पहले सतो प्रधान थी। जब एक सत शिव बाबा को याद करते थे भी बहुत थोड़े, शुरू में भक्ति मार्ग में भी थोड़े ही होते हैं, दिन प्रतिदिन वृद्धि बहुत होनी है। विलायत में जास्ती बच्चे पैदा करते हैं तो उनको इनाम मिलता है, और बाप किस लिए आया है, बाबा किस लिए आया है? फैमिली प्लानिंग करने। बाप कहते काम महाशत्रु है, सृष्टि की बहुत वृद्धि हो चुकी है, अब पवित्र बनो। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को अब बाप द्वारा जान चुके हो। सतयुग में भक्ति का नाम निशान नहीं है, अभी तो कितनी धूमधाम है, मेले मलाखड़े भी बहुत लगते हैं, जो मनुष्य जाकर दिल को बहलाए। तुम्हारा दिल तो बाप आकर बहलाते हैं 21 जन्मों के लिए, जो तुम सदैव बहलते रहते हो। तुमको कभी मेले मलाखड़े आदि में जाने का ख्याल भी नहीं आएगा, कहां भी मनुष्य जाते हैं तो सुख के लिए जाते हैं। अब तुमको कहां पहाड़ों पर जाने की दरकार है नहीं, और ड्रामा अनुसार बाबा आके कहां बैठा है, पहाड़ी में ही बैठा है, तो हम तो बैठे ही पहाड़ी में हैं, अभी कहां जाएंगे पहाड़ों में। यहां देखो मनुष्य कैसे मरते हैं, मनुष्य तो सतयुग कलयुग स्वर्ग नरक को भी नहीं जानते हैं। तुम बच्चों को तो पूरा ज्ञान मिला है, बाप नहीं कहते कि तुमको मेरे साथ ही रहना है, ये नहीं कहते कि या मेरे साथ पांडव भवन में ही सभी रहो, अगर ऐसा हो तो इतनी सेवा की वृद्धि कैसे होती। तुमको घर बार भी संभालना है, बच्चे जुदा तब होते हैं जब कोई खिटपिट होती, दुनिया में आजकल क्या है, अलग तब होते जब खिटपिट होती, फिर भी तुम बाप के संग रह नहीं सकते हो, सब सतो प्रधान बन नहीं सकते, कोई सतो कोई रजो कोई तमो अवस्था में भी हैं, सब इकट्ठे रह नहीं सकते, ये राजधानी बन रही है। जो जितना जितना बाप को याद करेंगे उस अनुसार राजधानी में पद पाएंगे। मुख्य बात ही है कौन सी, मुख्य बात कौन सी है, मुख्य बात कौन सी, एक बाप को याद करने की। बाप स्वयं बैठ ड्रिल सिखलाते हैं, ये है डेड साइलेंस। तुम यहां जो कुछ भी देखते हो उसको देखना नहीं है, देह सहित सबका त्याग करना है। तुम क्या देखते हो, एक तो अपने घर को और दूसरा पढ़ाई अनुसार जो पद पाते हो, उस सतयुगी राजाई को भी तुम ही जानते हो। जब सतयुग है तो त्रेता नहीं, जब त्रेता है तो द्वापर नहीं, जब द्वापर है तो कलयुग नहीं, परंतु जब कलयुग है तो क्या है? जब कलयुग है तो क्या है? संगम युग। अब कलयुग भी है और संगम युग भी है। बल तुम बैठे पुरानी दुनिया में हो, परंतु बुद्धि से समझते हो हम संगम युगी हैं। संगम युग किसको कहा जाता है ये भी तुम जानते हो। पुरुषोत्तम वर्ष, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम दिन भी इस पुरुषोत्तम संगम पर ही होता है। पुरुषोत्तम बनने की घड़ी भी इस पुरुषोत्तम युग में ही है। ये बहुत छोटा सा लीप युग है। तुम लोग बाजोली भी खेलते हो ना, जिससे तुम स्वर्ग में जाते हो। बाबा ने देखा है कैसे साधु लोग अथवा कोई कोई बाजोली खेलते खेलते यात्रा पर जाते हैं, ऐसे गुलाट लगाते लगाते जमीन पर यात्रा पर जाते हैं, बड़ी कठिनाई उठाते हैं। समझते हैं बड़ी कठिनाई उठाएंगे तो भगवान हमारे पर खुश हो जाएगा। अब इसमें तो कठिनाई की बात नहीं है, ये तो योग बल की बातें हैं। क्या याद की यात्रा तुम बच्चों को कठिन लगती है? कठिन लगती है? जिनको याद की यात्रा कठिन लगती है जरा हाथ उठाएं, और जिनको बहुत सहज लगती है जरा हाथ उठाएं। बाबा को याद करना ये तो हमारा नेचर बन गया अभी। ना हम बाबा को भूल सकते हैं, ना बाबा के बिना रह सकते हैं। एक बाबा दूसरा ना कोई। नाम तो बहुत सहज रखा है, कहां सुनकर डर न जाए। कहती है बाबा हम योग में नहीं रह सकते हैं। बाबा के पास हमारा आवाज क्या पहुंचता है, क्या फीलिंग पहुंचती है? बच्चे कहते बाबा हम योग में रह नहीं सकते हैं। बाबा फिर हल्का कर देते हैं कि ये है बाप की याद। योग योग शब्द बोलने से भारी हो जाते हैं। याद तो सब चीजों को किया जाता है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, तुम बच्चे हो ना, तो ये तुम्हारा बाप भी है तो तुम्हारा माशुक भी है। अब आशिक उनको तो याद करते ही है माशुक को। एक बाप अक्षर भी काफी है। भक्ति मार्ग में तुम मित्र संबंधियों को याद करते हो, फिर कहते हैं हे प्रभु, हे ईश्वर, ये सब शरीर नाम जरूर यूज करते हो। सिर्फ पता नहीं कि वो क्या चीज है। आत्माओं का बाप तो परमात्मा है, इस शरीर का बाप तो देहधारी है, आत्माओं का बाप अशरीरी है। वो कभी भी पुनर्जन्म में नहीं आती, और सभी पुनर्जन्म में आती है, इसलिए बाप को ही याद करते हैं। जरूर कभी सुख दिया, बाप को याद क्यों करते हैं? बाप के द्वारा सुख मिला हुआ है, वो स्मृति में है। उनको कहा जाता दुख हरता सुख करता, परंतु उनके नाम रूप देश काल को जानते नहीं है। जितने मनुष्य उतनी बातें हैं, अनेक मते हो गई है। बाबा कितना प्रेम से पढ़ाते हैं, सुबह सुबह बाबा प्रेम से पढ़ाते हैं, ज्ञान स्नान कराते हैं, ताजा ताजा हलवा खिलाता है, पहाड़ों पर घूमने ले जाता है, और क्या चाहिए। बाबा कितना प्रेम से पढ़ाते हैं, वो है ईश्वर, शांति देने वाला। कितना उनसे सुख मिलता है। एक ही गीता सुनाकर पतितों को पावन बना देते हैं। प्रवृत्ति मार्ग भी तो चाहिए ना। मनुष्यों ने कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कर दी है, फिर तो अनगणित मनुष्य हो जाए। अगर कल्प की आयु लाखों वर्ष हो तो मनुष्य तो पता नहीं कितने करोड़ों अबोजो पदम क्या क्या हो जाए। ये नॉलेज तुमको अभी मिलती है, फिर प्राय लुप्त हो जाती है। चित्र तो है जिनकी पूजा होती है, परंतु अपने को देवता धर्म का समझते ही नहीं है। जो जिनकी पूजा करते हैं वह उस धर्म के हैं, ये समझ नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि देवी देवता धर्म की, देवी देवताओं की पूजा करने वाले ये नहीं समझते हैं। क्या नहीं समझते हैं? कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं ये नहीं समझते, खाली देवताओं की पूजा करते हैं। हम उनकी ही वंशावली के हैं ये बाप ही समझाते हैं। बाप कहते तुम पावन थे, फिर तुम तमो प्रधान बन पड़े हो, अब पावन अर्थात सतो प्रधान बनना है। अच्छा, क्या गंगा स्नान करने से बनेंगे पावन? बाबा पूछते हैं। पतित पावन तो बाप है, वह जब आकर रास्ता बताए तब तो पावन बने। पुकारते रहते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं है। आत्मा पुकारती है ऑर्गन्स द्वारा कि हे पतित पावन आओ और आकर हमको पावन बनाओ। सब पतित है, काम चिता पर जलते रहते हैं। ये खेल ही ऐसा बदा हुआ है। फिर बाप आकर सबको पावन बना देते हैं। ये बाप संगम पर ही सब कुछ समझाते हैं। सतयुग में तो होता ही है एक धर्म और बाकी सब वापिस चले जाते हैं। तुम ड्रामा को भी समझ गए हो जो और कोई भी नहीं जानते हैं। इस रचना के आदि मध्य अंत क्या है, ड्यूरेशन क्या है, ये तुम ही जानते हो। वह सब है शूद्र और तुम सब कौन हो? तुम सब कौन हो? ब्राह्मण। वो है शूद्र, तुम वो ब्राह्मण। तुम भी जानते हो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। कोई गफलत करते हैं तो उनके रजिस्टर से दिखाई पड़ता है कि ये कम पढ़ाई की है। कैरेक्टर्स का रजिस्टर होता है, यहाँ भी रजिस्टर होना चाहिए। अब देखो जनरल में तो सभी का रजिस्टर इतने सबका नहीं रख सकते हैं, लेकिन हर एक अपना रजिस्टर रख सकते नहीं रख सकते। और रजिस्टर रखना माना क्या? डेली चार्ट चेक करना, लिखना। स्वयं में जहां चेंज करने की जरूरत है वहां चेंज करना। यह है याद की यात्रा, जिसका कोई को भी पता नहीं है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट कौन सा है? याद की यात्रा। अपनी को आत्मा समझ बाप को याद करना है। आत्मा मुख से कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। ये सब बातें कौन सुनाते हैं? ये सब बातें कौन सुनाते हैं? सुनो, ये सब बातें ये ब्रह्मा बाबा नहीं समझाते, परंतु ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा इस रथ में बैठकर सुनाते हैं। कहा जाता है गौ मुख। मंदिर भी यहाँ बना हुआ है जहाँ तुम बैठे हो। जैसे तुम्हारी सीढ़ी है, वैसे वहां भी सीढ़ी है, तुमको चढ़ने में थकावट नहीं होती है। अच्छा तुम यहां क्यों आए हो भाई, या मधुवन में हम क्यों आते हैं? रिफ्रेश होने। तुम यहां आए हो बाप से पढ़ करके रिफ्रेश होने के लिए। वहां तो बहुत गोरख धंधा है, अपनी प्रवृत्ति में बहुत गोरख धंधा है, शांति से सुन भी नहीं सकेंगे। संकल्प चलता रहेगा, अपनी अपनी प्रवृत्ति के स्थान की बात बाबा सुनाते हैं, संकल्प चलता रहेगा, कोई देख ना ले जल्दी घर चला जाओ। होता है ना, आते हैं, कईयों को बंधन भी होता है, कईयों के संबंधियों को पसंद नहीं आता है, कितना ओना रहता है, चिंता रहती है। यहाँ तो कोई भी ओना नहीं है, जैसे हॉस्टल में रहते हैं, यहाँ ईश्वरीय परिवार है, शांति धाम में भाई भाई रहते हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई है, यहाँ है भाई बहन, क्योंकि यहाँ पार्ट बजाना है ना, तो भाई बहन चाहिए। सतयुग में भी तुम आपस में भाई बहन रहते हो, उनको कहा जाता अद्वैत राजस्थानी, वहां लड़ाई झगड़ा आदि कुछ भी नहीं होता है। तुम बच्चों को पूरी नॉलेज मिली है कि हम 84 जन्म लेते हैं, जिसने जास्ती भक्ति की है उनका हिसाब भी बाबा ने बताया है। तुम ही शिव की अव्यभिचारी भक्ति करना शुरू करते हो, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है, वो है सब भक्ति। ज्ञान तो एक ही होता है, तुम जानते हो हमको कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है? शिव बाबा। ये ब्रह्मा तो कुछ भी नहीं जानते थे, जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर था वह इस समय ये बने हैं, फिर मालिक बनते हैं। ततत्वम, जैसे ब्रह्मा बाप वैसे तुम बच्चे, एक तो मालिक नहीं बनेगा ने, तुम भी पुरुषार्थ करती हो। ये है बेहद का स्कूल, तो हम सब कौन है? ये बेहद की स्कूल है तो हम कौन है? स्टूडेंट्स हैं। इनकी ब्रांचेस ढेर होगी, गली गली घर घर में हो जाएगी। कहते हैं हमने अपने घर में चित्र रखे हैं, मित्र संबंधी आदि आते हैं तो हम उनको समझाते हैं। घर घर में गीता पाठशाला, घर घर में सेंटर हो जाएंगे। जो इस झाड़ के पत्ते होंगे वो आ जाएंगे, उनों के कल्याण के लिए तुम करते हो। तुम जो भी कुछ प्रदर्शनी सेवा आदि करते किस लिए करते? सभी के कल्याण अर्थ करते हो। चित्रों पर समझाना होगा, शास्त्र तो ढेर पढ़े हैं, ये सब भूलना है। जो पढ़ा हुआ है वो सब भूलना है। बाप है पढ़ाने वाला, वही सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, 1.5 साइलेंस की ड्रिल करने के लिए, 1.5 साइलेंस की ड्रिल करने के लिए यहां जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई देता है, यहां जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई देता है उसे नहीं देखना है। देखता कौन है? आंखें देखती हैं कि आत्मा देखती है? देह सहित, देह सहित बुद्धि से सब का त्याग कर, देह सहित बुद्धि से सबका त्याग कर अपने घर और राज्य की स्मृति में रहना है। अपने घर और राज्य की स्मृति में रहना है। दूसरा है, अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखना है। अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखता है। पढ़ाई में कोई भी गफलत नहीं करनी है, पढ़ाई में कोई गफलत नहीं करनी है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना और बनाना है। पुरुषोत्तम बनना और बनाना है। वरदान, सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले, सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले हर्षित मुख, हर्षित चित्त भव। हर्षित मुख, हर्षित चित्त भव। विस्तार है, जब भी कोई देवी या देवता की मूर्ति बनाती है, जब भी कोई देवी या देवता की मूर्ति बनाती है तो उसमें चेहरा सदा हर्षित दिखाते हैं, उसमें चेहरा सदा हर्षित दिखाते। तो आपके इस समय के, आपके इस समय के हर्षित मुख रहने का यादगार चित्रों में दिखाते हैं। यहां हम प्रैक्टिकल में हर्षित मुख रहते हैं, उसी का ही चित्र बनता है। जो भरपूर होता है वो हर्षित रह सकता है, जो भरपूर होता है वो हर्षित रह सकता है। अगर कोई भी अप्राप्ति होगी तो हर्षित नहीं रहेगा, अगर कोई भी अप्राप्ति का अनुभव होगा तो हर्षित नहीं रहेगा। कोई कितना भी हर्षित रहने की कोशिश करे, कोई कितना भी हर्षित रहने की कोशिश करे, बाहर से हंसेंगे लेकिन दिल से नहीं, बाहर से हंसेंगे लेकिन दिल से नहीं। आप तो दिल से मुस्कुराते हो, आप तो दिल से मुस्कुराते हो, क्योंकि सर्व प्राप्तियों से भरपूर हर्षित चित्त हो, सर्व प्राप्तियों से भरपूर हर्षित चित्त हो। तो सुना, हमें मन बहलाने के लिए, दिल बहलाने के लिए कहां जाने की जरूरत नहीं है, न मेले मलाखड़े में जाना है। हमें सर्वश्रेष्ठ मिलन, परमात्मा मिलन हो चुका है, तो हमें एक बाप की याद की मस्ती में रहना है। बाबा हमारा बाप भी है तो हमारा साजन भी है। अच्छा, तो स्लोगन देखे, स्लोगन, पास विथ ओनर बनना है, पास विथ ओनर बनना है। तो हर खजाने का जमा खाता भरपूर हो, तो हर खजाने का जमा खाता भरपूर हो। अच्छा, ये मुरली की पॉइंट्स है। जितना आपस में संस्कारों में समानता लाएंगे, जितना आपस में संस्कारों को समानता में लाएंगे उतना ही समीप आएंगे। जैसे साकार रूप के संस्कार, ब्रह्मा बाबा साकार में थे, जब साकार रूप के संस्कार उपराम और साक्षी दृष्टा की रहे, उपराम और साक्षी दृष्टा की रहे, यही साकार के संपूर्ण स्थिति के श्रेष्ठ लक्षण थे, यही साकार के संपूर्ण स्थिति के श्रेष्ठ लक्षण थे। इन संस्कारों में समानता लागी है। ब्रह्मा बाबा के कदमों पर कदम रख करके फॉलो फादर करने से बाप समान संस्कारों को हम धारण कर सकेंगे। इन संस्कारों में समानता लानी है, इसमें ही सर्व के दिलों पर विजयी होंगे। और संगम पर सर्व के दिलों पर जो विजयी बनता है, संगम पर सर्व के दिलों पर जो विजयी बनता है, वही भविष्य में विश्व महाराजन बनता, वही भविष्य में विश्व राजन बनता।
हम सभी जानते हैं शांतिवन में मीटिंग्स चल रही है, एनुअल मीटिंग पूरी हुई और अभी 108 बहनों की बड़ी मीटिंग चल रही है। सभी व्यस्तता के बीच में से समय निकाल करके आदरणीय दीदी जी हम सभी के बीच में आए हैं हमें लाभ देने के लिए। हम एक हाथ की ताली से दीदी जी का स्वागत करेंगे, अपनी खुशी प्रकट करेंगे। और हम देख रहे हैं मुरली तो समय से पूरी हो गई है, 10 मिनट और भी है, तो जरूर दीदी जो उनको प्रेरणा हो कुछ सुनाए, चाहे मीटिंग की कोई विशेष बात या कोई विशेष अनुभव, जो भी।
ओम शांति। बाबा हम सब बच्चों को देवताओं के समान चेहरे और चलन से साक्षात मूरत और साक्षात्कार मूरत देखना चाहते हैं। और जो अंतिम सेवा है उसका साधन ही है चेहरे और चलन के द्वारा सेवा। तो उसके लिए मुख्य रूप से हमारी एक धारणा होनी चाहिए, समाधान वृत्ति। हमारी मनसा के अंदर किसी भी प्रकार की हलचल न हो। हलचल कब होती है? जैसे ही आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होता है, क्वेश्चन उत्पन्न होता है, तो प्रश्न उत्पन्न होने से आत्मा अपनी स्थिति में स्थित नहीं रह सकती है, वो प्रश्न में उलझी हुई है, खोई हुई है। और वृत्ति में एकाग्रता नहीं रहती है, तो इसीलिए समाधान की वृत्ति ये बहुत आवश्यक है। अब समाधान वृत्ति बने कैसे? सबसे पहले बाबा ने हमें ड्रामा के कुछ राज समझाए हैं। अगर वो राज हमारी बुद्धि में रहे तो हमारी वृत्ति हमेशा समाधान की वृत्ति रहेगी। नंबर वन, बाबा ने कहा है बच्चे ये ड्रामा है और ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। अब जब हूबहू ही रिपीट होता है तो हमें करना क्या है? हमें साक्षी भाव से इस ड्रामा को देखना है। कोई नई चीज नहीं है। तो हूबहू की धारणा से हमारे जीवन में साक्षी भाव आएगा। फिर दूसरी बात बाबा ने कही है कि ये जो ड्रामा है ना, उसका ये भी एक लक्षण है कि उसका थीम पॉजिटिव है। बाबा की किन महावाक्यों से ये समझ में आता है कि इसका थीम पॉजिटिव है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। तो ये ड्रामा बहुत पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो फिर प्रश्न रहा ही नहीं, प्रसन्न चित्त रहेंगे कि ये ड्रामा कल्याणकारी है, ये ड्रामा अच्छा है, भला है, सब अच्छे हैं, सब भले हैं, सबकी भलाई समाई हुई है। फिर तीसरी बात, ये ड्रामा एकदम एक्यूरेट है। बाबा मुरली में कहते हैं कि एक मक्खी यहां से गई 5000 साल पहले भी ये ऐसे ही गई थी। एक्यूरेट है। तो हर एक आत्मा का पार्ट जो है जैसा है वैसा ही उसको बजाना पड़ेगा। मेरे कहने से या मेरे सोचने से उसमें बदली होने वाला नहीं है। जबकि हर एक आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है, तो जब हम औरों के पार्ट को देखते हैं ना, तो हमारे को क्या स्मृति रहनी चाहिए उस समय? जब हम औरों को पार्ट को देखते हैं तब हमको भी तो याद रहना चाहिए ना कि भी मैं तो पार्टधारी हूं, ये भी पार्टधारी सब है, लेकिन मैं भी कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं पार्टधारी हूं नहीं हूं? तो बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आपको हीरो पार्ट प्ले करना है तो आप जीरो की स्थिति में रहो। आप जीरो की स्थिति में रहेंगे, बीज रूप की स्थिति में रहेंगे, तो आप हीरो पार्ट प्ले करेंगे। तो सभी के ड्रामा को देखते हुए हम जीरो की स्थिति में रहे, जो आत्मा की असली आदि अनादि पावन स्थिति है, उस स्थिति में रह करके हम अपना भी पार्ट प्ले करें। अगर ये सब बातें प्रैक्टिस में रही तो हमारी समाधान वृत्ति बनी रहेगी, मन एकदम शांत रहेगा, बुद्धि एकदम शीतल रहेगी, संस्कार एकदम दैवी संस्कार इमर्ज रूप में खुद भी महसूस करेंगे। जो आत्मा की सतोप्रधान अवस्था है तो समाधान वृत्ति और सतोप्रधान बुद्धि, सतोप्रधान बुद्धि देवताओं की बुद्धि है। तो जितना जितना हम समाधान वृत्ति में रहेंगे उतनी सतोप्रधान बुद्धि बनेगी। जितनी सतोप्रधान बुद्धि बनेगी इतना स्वयं ही स्वयं के दिव्य रूप को अनुभव कर सकेंगे। मैं हूं ही देवात्मा, मैं हूं ही महान आत्मा, मैं हूं ही सर्वगुण संपन्न सोले कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी, मैं हूं, बनूंगी नहीं। बाबा ने जितने स्वमान हमें दिए हैं वो स्वमान प्रेजेंट के लिए दिए हैं, भविष्य के लिए नहीं दिए हैं, प्रेजेंट के लिए दिए हैं। और बाप समान बनना भी प्रेजेंट में बनना है। तो जैसा मेरा बाप वैसे मैं, जो मेरे बाप के गुण वो मेरे गुण, जो मेरे बाप की शक्तियां वो मेरी शक्तियां। तो अभी इस महसूसता में हमें रहना होगा और इसी से बहुत सहज रीति बाबा जो हमारे से चाहता है ना वो सेवा करने के निमित्त हम बन सकेंगे। पर अपने आप को उसी अवस्था में रखना है, बस हम अंडरग्राउंड रहे, अपनी आत्मा की अनंत यात्रा में रहे। अब बाहर दुनिया में कुछ देखने का है ही नहीं। देखो ये आंखें हैं ना, जो देखती है वो सोचती है। आंखें बहुत स्मार्ट हैं, होशियार हैं। तो जो देखने की जरूरत ही नहीं है, मुझे अपनी आंख उठा करके वो देखना नहीं है। अंतर्मुखी वृत्ति रहे तो स्थिति बहुत अच्छी बन जाएगी। तो अपने अंदर ये संकल्प रखे कि मुझे समाधान वृत्ति और सतोप्रधान बुद्धि को धारण कर। चलिए प्यारे बाबा की याद।